अब चलते हैं टिप नंबर 11 11 पे। कजाओ कदर को माने बगैर चारा नहीं। जी, तकदीर को जब छुटला नहीं सकते तो मान लीजिए, कजा कदर क्या है? तकदीर। आपका मेरा नसीब जो अल्लाह ने लिखा उसको मानिए, बगैर इसके चारा ही नहीं है। एज इट इज़ मान लीजिए, कबूल करें। आपको मोटा ही होना था, आपका कद ऐसे ही रहना था, आपकी नाक ऐसी थी, जब पलकों के बाल गिनती रहती है ना, ये इतने ही रहने थे। ये मेरे रब का फैसला है, एक तेरी रजा एक मेरी रजा, मेरी ना मानी गई तो तेरी मानी गई। जब आप इस ताल्लुक को याद रखेंगे ना तो खुश होगी। आप जितना ज्यादा अल्लाह के फैसलों को मानते जाएंगे ना, कहिए यही बच्चे थे मेरे नसीब में, यही शौहर मिलना था, यही ससुराल था मेरे नसीब में, यही माँ बाप थे। कुछ को तो माँ बाप तक नहीं पसंद आते, वो कहते हैं आप काले हैं ना तो हम भी काले हो गए, आप गोरी होती ना मामा तो मैं भी गोरी होती, ये आपका नाक छोटा था ना तो मेरा भी छोटा रह गया, ये मुझे इनहेरिटेंस में मोटापा मिल गया। नहीं, मान लीजिए। क्यों? कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें ज़मीन में और या तुम्हारे नफ्सों में जो तकलीफ़ पहुंचती है, वो तुम्हारी पैदाइश से पहले ही एक रिकॉर्ड में दर्ज कर ली गई है। कलम सूख चुका, सहीफे उठा लिए गए, मामला तय पा गया, तकदीर लिखी जा चुकी, वही हमें पहुंचता है जो हमारे लिए लिखा जा चुका है। कला युसी बना इल्ला मा कतबल्लाहुलना, हमें तो वही पहुंचेगा जो अल्लाह ने दिया। और पहली आयत जो थी, ये सूरत हदीद की 22 है, कि मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नबरहा। तो यकीन कीजिए कि आपका नसीब लिखा जा चुका है। जो हमारे साथ हुआ वो टलने वाला ना था, जिससे हम बच गए वो हमें लाहक होने वाला ना था। कभी कभी बाल बाल नहीं बच जाते हादसे से, ये भी लिखा हुआ था कि हादसा होने लगेगा फिर आप बच जाएंगे। जब ये अकीदा आपके दिल में अच्छी तरह बैठ जाए तो तकलीफ अतिया बन जाती है और मुसीबत इनाम बन जाएगी। लिखिएगा, तकलीफ तोहफा बन जाती है और मुसीबत इनाम बन जाती है। जो गुजरे उसे आप अच्छा समझें, अल्लाह जिसके साथ खैर चाहता है उसे उसमें से हिस्सा मिलता है। अब जो भी आपको तकलीफ़ पहुंचे, बीमारी लाहक हो, कोई अजीज़ फौत हो गया, माली नुकसान हो जाए, घर जल जाए, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने यही मुकद्दर में लिखा था। वो कहते हैं ना कि लिखा कब मिटे कलक तकदीर का, इसमें सारा इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हाँ, सब्र करने पर अजर मिलेगा। इसका इनकार कुफर है, इसलिए जो मसाइब का शिकार है वो खुश हो जाए कि सब कुछ अल्लाह बरतर के हुक्म से हो रहा है, जो देता भी है लेता भी है, आता भी करता है छीनता भी है। इससे इसके कामों का हिसाब नहीं लिया जा सकता, दूसरों से लिया जाएगा। तो कजाओ कदर पर जब तक ईमान ना हो, आपके आसाब यानी मसल्स को सुकून नहीं मिलेगा, नफसियाती उलझन ना जाएगी, दिल के वसवसे दूर ना होंगे, जो होना है वो होकर रहेगा। लिहाजा हसरत और नदामत से क्या फ़ायदा? ये मत सोचिए कि गिरती दीवार को आप बचा लेंगे, पानी को बहने से रोक देंगे, हवा को चलने से मना कर देंगे, शीशे को टूटने से आप बचा लेंगे, ये नहीं हो सकता। आपको और मुझे अच्छा लगे या बुरा, जो लिखा है वो होकर रहेगा। फैसला इलाही नाफिस होगा, जो चाहे मान ले, जो चाहे ना माने। जी, कुरान का हुक्म है ये। तो नाराज़गी से, अफसुर्दगी से, चीहो पुकार से शोर मचाने की बजाय अल्लाह के फैसले के आगे सर तस्लीम खम कर दीजिए, क्योंकि आज की थीम आयत बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाह। अगर आपने असबाब से काम लिया होगा, तदबीरें अपनाई होंगी, फिर भी वो हो जाएगा जिसका अंदेशा था, तो कहिए कि यही मुकद्दर था। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, ये ना कहें कि काश मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा होता, ये ना कहिए आप। अल्लाह ने आपके लिए यही लिखा है, खुश रहने का राज सरेंडर इट, मान लीजिए। देखिए, आप और मैं तकदीर से लड़ नहीं सकते, उलझ नहीं सकते, तो मान लीजिए। इस मौजू पे एक पूरा सेमिनार हुआ था लंदन में, अगर आपको मौका मिल जाए तो उसकी ऑडियो सुन लीजिए। तकदीर के फैसले, एक हमारा पूरा टॉपिक है इस पे, तकदीर वर्सेस तदबीर। तो ये तदबीरों में उलझने वाले लोग तकदीर को पीछे ही करते हैं, थोड़ा सा इस पे मज़ीद गौर व फिक्र करते हैं। अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला जिसको आज तक आप एक्सेप्ट नहीं कर सके उसको जहन में लाइए, ठीक है, ये एक्टिविटी है। कोई अनहोनी बात जो बर्दाश्त ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से रातों की नींदें आज भी उड़ी हुई हैं कि ये हुआ तो मेरे साथ क्यों हुआ। बस बेटी का कोई हादसा, औलाद का कोई गम, बेटे की तरफ से कोई सदमा पहुंचा, शौहर कहीं इधर उधर हो गए थे कुछ दिन तक जहनी और जिस्मानी तौर पे ही सही, अब आप जल रही हैं, कुढ़ रही हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, किसको देखूं, किसकी बात सुनूं और किसके साथ अपना मामला बिगाड़ूं जोड़ूं। आप सूरत हदीद की आयत 22 पे नज़रें जमा लीजिए, गौर व फिक्र कीजिए कि मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्ली अन नबराहा। कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो ज़मीन में उतरे, यानी मीन के बाहर की दुनिया में कोई गम आए आपको, या फिर अपने नफ्सों पे आए, यानी बीमारी आ जाए, तकलीफ़ आ जाए, परेशानी आ जाए, या आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम कह लीजिए ऐसी या दूसरी, इससे पहले कि आप पैदा हुए हों लिख ली गई, यानी हमने इसको पैदा करने से पहले किताब में लिखना रखा और ये किताब के लोहे महफूज आपकी मेरी तकदीरों के फैसले उसमें लिखे गए। तो एक जुमला कम अज़ कम 10 दफ़ा अपने आप को सुनाइए दिन में। चलिए हर नमाज के बाद 2 दफ़ा कर लेंगे तो याद रहेगा। और वो क्या है, कज़ाओ कदर को माने बगैर चारा नहीं है। तकदीर के साथ दो फिरके जुड़े हुए हैं जो गुजर गए माजी में, एक खुद को जबरिया कहते थे, एक कदरिया कहते थे। जबरिया कहते थे मजबूरे कुल, हमारी तो कोई मर्जी नहीं, अल्लाह ने तकदीर का पटा गले में डाल के भेजा, अब क्या फ़ायदा। ये कहते थे तकदीर ही सब कुछ है। इसके बरक्स दूसरे क्या थे, वो कहते थे कदरिया, कहते थे तकदीर कुछ नहीं होती, हम जो चाहते हैं वो होता है, हम कदरिया हैं, कुदरत रखते हैं, दोनों का दीन में कोई हिस्सा नहीं है। आज क्या हुक्म है, अल्लाह के नबी की हदीस सुन लीजिए इस टिप के साथ, सिलसिला सहीहा की रिवायत नंबर 66 है। हर चीज़ तकदीर के साथ मौलिक है, मौलिक कहते हैं लटकी हुई, हत्ता के बेबसी और लाचारगी और अक्लो दानिश भी। कभी सुनी थी ये हदीस पहले, क्योंकि मैंने तो आपके इस टॉपिक के साथ इसको रखा हुआ है, कभी गौर भी नहीं करते हम ऐसी हदीसों पे। आप बेबस हैं ना किसी वक्त, लाचार हैं, यानी अम युजीबुल मुस्तर्रा वाली कैफियत है ना, मुस्तर, तो उस वक्त भी कह लीजिए ये मेरे रब का फैसला है। और कभी अकल है या कभी दानिश है, तकदीर में आपका एक बच्चा इतना अक्लमंद आपको डॉच दे जाता है आपको समझ ही नहीं आती, और एक इतना भोला बुद्धू के समझ ही नहीं आता। तो चार बातें याद रखिए तकदीर पर ईमान लाने वाली, ताकि आप कभी भी ना भूलें इसको। तकदीर पर ईमान लाने के लिए चार उमूर कौन से हैं। नंबर एक, इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह ताला तमाम चीज़ों के बारे में जुज़वी और कुल्ली, यानी बारीक बातें भी और बड़ी भी, इसको आप आसान समझते हैं तो अजमाली और तफसीली कह लीजिए, हर लिहाज से अजल और अबद तक इल्म रखता है और रखेगा, यानी आपकी मेरी ज़िंदगी में होने वाले छोटे से छोटे वाक़ियात और बड़े से बड़े सब कुछ अल्लाह को पता है शुरू से आखिर तक। दूसरी बात, इस बात पर ईमान लाना कि अल्लाह ताला ने तकदीर को लोहे महफूज में लिख दिया है। तीसरी बात, इस बात पर ईमान हो कि सारी कायनात के उमूर मशीयते इलाही के बगैर नहीं चल सकते, जो मर्जी कर लें वक्त के पहिए को धक्का आप नहीं लगा सकते। और चौथी बात है कि इस बात पर ईमान लाना कि तमाम कायनात अपनी ज़ात, सिफात और नक़लो हरकत के एतबार से अल्लाह ताला की मखलूक है, चाहे वो जिन हैं, शजर हैं, हजर हैं। तो जब आपको इन चार चीज़ों का यकीन होगा ना, तो आप पुकारेंगे या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, क्योंकि उसी के हाथ में आपकी तकदीर का कलम। तो लिखिए, मालिक कौन सा मालिक, मालिक कुल अल्लाह की ज़ात है, मालिक मुतलक अल्लाह है, जिसने ये बता दिया कि कलम सूख चुका, कौन सा, जिससे तकदीर लिखी जाती है, सहीफे उठा लिए गए, वो दफ्तर जिसमें आपकी मेरी ज़िंदगी में होने वाले वाक़ियात लिख दिए गए, मामले तय हो गए हैं जो आपके मेरे साथ होने वाले हैं, और तकदीर लिखी गई है। कितना सुकून मिलता है आपको। चलिए थोड़ा सा आपको तकदीर के बारे में मज़ीद बता दूं, क्योंकि टॉपिक बड़ा खूबसूरत है। और यकीन कीजिए, ये जो डोंट बी सैड सीरीज़ है ना, आधी चीज़ें अगर आप बाद में गौर करेंगे ना, जब पूरी 300 के करीब हो जाएंगी, तो आप देखेंगे उसमें से आधी का ताल्लुक तकदीर से है। हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो तकदीर की दो बड़ी मारूफ किस्में हैं, देखिएगा। तकदीर मुबरम, ये वो तकदीर है जो अटल होती है, इसमें कोई तगैयर और तबदुल नहीं होता, यानी इसमें चेंजेस नहीं होती। लोहे महफूज में एक ही बात लिखी होती है जो होकर रहती है, ठीक है। मसा आप औरत है के मर्द, अब ये नहीं चेंज होगा। अल्लाह ये कि आज के दौर में कोई अपनी मर्जियां करके न औरत रहे तो न मर्द रहे, ये तो फिर बेकारियात है ना। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें, आपने जिस माँ के घर पैदा होना था हो चुके हैं, अब वो दोबारा किसी और माँ के घर से आप पैदा नहीं होंगे, इस तरह की चीज़ें। दूसरी है तकदीर मुअल्लक, वो तकदीर जो अटल नहीं होती, लटकी हुई है, इसमें तगैयर और तबद्दुल यानी चेंजेस होती रहती हैं, और ये दुआओं से बदलती हैं, सिला रहमी से बदल जाती है ये तकदीर, गुनाहों से बदल जाती है। मसलन देखिए, एक शख्स है जैद, उसने अपने वालदैन की खिदमत की तो इसकी उम्र लंबी हो गई, और अगर खिदमत ना की तो इसकी उम्र लंबी नहीं होगी, तो मशरूत हो गई ना ये तकदीर। सिला रहमी से उम्रें बढ़ जाती हैं, सदका खैरात से बढ़ जाती हैं, दुआओं से, दुआ मांगी तो ये काम होगा, ना मांगी तो नहीं होगा। तो सवाल एक लिखिए कि तस्लीम कज़ा व कदर का फ़ायदा क्या है, यानी तकदीर को तस्लीम कर लेने से क्या मिलेगा। नंबर एक इत्मीनान कल्ब, नंबर दो तकलीफ़ पे सब्र, नेमत पे शुक्र, और जहनी सुकून, और सबसे बढ़ के माजी और मुस्तकबिल से बेफिक्र, ये हैं ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। कितना आसान था खुश रहना, गमों से पाक रहना, और हम किन चीज़ों में खो के अपनी ज़िंदगियों का एक बड़ा हिस्सा ज़ाया करके आ गए। हदीस लीजिएगा इस टिप से मुतल्लिक, जामे तिरमिज़ी की रिवायत 2144, जाबिर रावी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स मोमिन ना होगा जब तक कि तकदीर पर ईमान ना लाए, इसकी भलाई पर भी और इसकी बुराई पर भी, यहाँ तक कि यकीन करे कि जो बात वाकई होने वाली थी वो इससे हटने वाली ना थी, और जो बात इससे हटने वाली थी वो इस पर वाकई होने वाली ना थी। तो आज के बाद ये ना कहिए कि उसकी आती मुझे आ जाए, उसकी टली मुझ पे आ गई, बहुत सारी कमी बेशी है इसमें हमारे कल्चर में, तो कभी भी ऐसे जुमले ना बोलिए। एक सवाल आप पूछ सकते हैं, आपका हक है, कि क्या बुरी तकदीर से बचने की भी कोई दुआ है, यानी मुसीबतें ना आए या आई हैं तो टल जाएं, तकदीर बुरी थी बेहतर हो जाए, तो बिल्कुल इसकी दुआ है, आपको बताते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुरी तकदीर, बदबख्ती, दुश्मनों के खुश होने और सख्त मुसीबत से पनाह मांगा करते थे। दुआ के लफ्ज़ कुछ इस तरह से हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सूइल क़ज़ाई व मिन दरक़िश शक़ाई वमिन शमातिल आदाई वमिन जह दिल बलाई। ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आता हूँ बुरे फैसले से और बदबख्ती के मिलने से और दुश्मनों के खुश होने से और बला की मशक्क़त से। ये दुआएं याद भी की जाएंगी। चार चीज़ें हैं, बुरे फैसले, बदबख्ती का मिलना, दुश्मनों का खुश होना और बला की मशक्क़त, इनसे पनाह की ये दुआएं। और ये सही बुखारी में 6616 और मुस्लिम में 2707 भी है, याद कर लीजिए। मैं तो इतना ट्रस्ट करती हूँ इस एक दुआ पे कि अल्लाह के नबी की हर बात की तरह ये बात भी सच्ची है। तो अब इतना कुछ तकदीर के बारे में सुना, खुश रहने के नाते और गम दूर करने के लिए, तो अब करें क्या, इंसान को क्या चाहिए। नंबर एक, शरीयत के मुताबिक अमल कीजिए, बुरे अमाल से बचने की कोशिश कीजिए, कज़ा व कदर पर यकीन रखिए, हर तकलीफ़ अल्लाह ताला की तरफ से, इस पर यकीन रखिए। नेकी और बदी के दो रास्ते अलग हैं, दोनों रास्तों का अंजाम फ़र्क है, सोच समझ के चलिए। इंसान कुल्ली तौर पर बाख्तियार नहीं, ना ही इंसान मजबूर कुल है, तो दोनों के बीच में रही तदबीर इख्तियार कीजिए और उसके बाद खुद को तकदीर पे छोड़ दीजिए। और फिर मान लीजिए कि तकदीर लिखी जा चुकी है, तंगी हो कि खुशहाली, अल्लाह की तरफ से आती है। बंदे मोमिन के दिल का हाल क्या होता है, तभी तो वो फिर ला खौफ़ुन अलैहिम की और वला यहज़नून की कैटेगरी में आएगा। तो लिखिए, बंदे मोमिन राजी व रजा होता है। اس کی کوئی عقل نہیں ہوتی، کوئی سوچ، ہڈی پسلی کے بغیر ہوتا ہے مومن، بون لیس میٹ کی طرح۔ چاپ کر دو، سرکہ ڈال دو، چاٹ مسالے ڈال دو، کباب مسالہ ڈال دو، گودتے رہو اس کو، وہ نہیں آگے سے بولتا، آپ کانٹے سے اس کو گودو، وہ اپنا پیش کر دیتا ہے۔ ایسا مومن خوش رہتا ہے۔ کریں کیا؟ اسباب اپنائیے، تدبیر بھی اختیار کیجیے۔ محنت کے باوجود کمی، ناکامی اور اندیشے کے لیے تیار رہیں۔ کاش کا لفظ کبھی نہ بولیں، اور خود کو یقین دلائیں کہ یہی میرے مقدر میں تھا۔ بڑے سے بڑا غم ہلکا ہو جاتا ہے اس جملے کے بعد، اللہ ما قطب اللہ لنا۔ یعنی یہ جملہ مجھے پچھلے دو دہائی ماہ میں زبانی یاد چاد ہو گئی ہے کہ جو اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح ہمیں کیا کرنا ہے؟ تقدیر پر راضی رہنا، رسمی شکر نہیں کرنا، دلی شکر کرنا۔ جیسے ابھی مثال دی ہے نا کہ کچھ لوگوں کا جسم تو سجدہ کر لیتا لیکن دل نہیں کرتا، عقل سجدے نہیں کرتی، تو دل سے شکر کیجئے، الحمدللہ بول کر شکر کیجئے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی آئے گی۔ دوسرا کام جو آپ نے میں نے کرنا ہے، بلا من اسلم وجہہ للہ، آج یہ آیت یاد کریں، اور اگر آپ روز کی ایک ایک آیت صحیح کریں گے نا تو اینڈ پہ آپ کو دیکھیے قرآن پاک کی انشاءاللہ 28 آیتیں یاد ہو چکی ہوں گی، اور ایک دو آگے کر کے کوشش کروں گی 42 آیتیں یاد کروا دوں، جس کا تعلق لا خوف یا لا تحسن سے۔ خود کو سپورٹ کرتے ہیں، لے لو اللہ مجھے، اللہ کیپ می، ٹیک می اللہ۔ یقین رکھیے کہ صرف اللہ ہمارا ہمدرد اور غم گسار ہے۔ پھر اسی طرح شکووں والا رویہ نہیں اپنانا، تقدیر کے بارے میں صحیح علم حاصل کرنا، وہ اعمال کرنے ہیں جن سے تقدیریں بدلتی ہیں، پریشانیوں سے گھبرا کر شرکیہ عقائد نہیں اپنانے، اور دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ چند سیکنڈ لیجئے اپنے لیے کوئی اچھی نیت کرنے کے لیے۔ ہر ٹپ کے بعد اپنا محاسبہ بھی کیا کریں۔ مجھے رسمی رواجی پڑھنا پڑھانا نہیں آتا، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم عملی ٹپس کے ساتھ چلیں۔ ایک آدھ دن کے بعد اور دیکھیے گا، آپ کو لگے گا بھی نہیں یہ کوئی قرآن کورس ہے۔ ریلیجس چیزوں کے ساتھ ہم ہمیشہ بورنگ، خوش، کتاب کھولو، آگے لکھو پڑھو کرتے ہیں، اس کو لائف ٹائم سچویشنس میں نہیں لیتے۔ تھوڑا سا آپ ریلیکس ہوں گے کیونکہ ماشاء اللہ ہمارے پاس ابھی بہت ٹائم ہے، تو ایک آدھ دو دن کے بعد آپ خود فیل کریں گے کہ یہ آپ کا فرینڈ شپ ٹائم ہو گیا۔ جیسے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا تو دکھ سکھی تو کرے ہوتے ہیں، اور کیا کرنا ہے، اس نے یہ کہا، میاں یہ کہہ رہے ہیں، احساس کا تو کیا بتاؤں۔ آپ کو یہ کورس ایسے فیل ہونے لگے گا کہ آپ اپنے دل کے دکھ سکھ کر کے اٹھتے ہیں، اور جب ادھر کر لیے تو پھر کہیں اور کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اب اگلی ٹپ پہ چلتے ہیں، ٹپ نمبر 12، عسر کے ساتھ یسر بھی ہے، اس کو مان لیجئے۔ فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، جی عسر کہتے ہیں تنگی کو، عسرت کا لفظ بولتے ہیں نا اردو میں، ایک ہوتا ہے عشرت، وہ نہیں ہے، یہ عسرت ہے، صرف سین اور شین کا فرق ہے دیکھا جائے لفظوں میں تو۔ اور یسر یسرا، یسیر یسر، یعنی زندگی میں دھوپ اور چھاؤں کی طرح عسر اور یسر رہے گا۔ خود کو کہیے انسان، بھوک کے بعد پیٹ کا بھرنا، شکم سہری ہو جاتی ہے نا جب کھا کے اٹھتے ہیں تو ماشاءاللہ، پھر اتنا بھر جاتا ہے کہ وہ ہضم ہی نہیں ہوتا، پھر کہتے کچھ اور ہے ذرا میں کھاؤں، ہاجمولا، سوڈا اور کاوے اور کچھ۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا جب بھوک کی کیفیت تاری ہوئی نا، پسلیوں تک پیٹ لگ گیا، اور اس کے بعد کھانا ملا تو پیٹ بھر گیا، پیاس کے بعد سیرابی، بہت پیاس تھی اور اب پی چکے، ذہب الظما وابتلت الروح وثبت الاجر، انشاءاللہ۔ کتنے دن، 30 دن یہ دعا مانگ کر آئے ہیں رمضان میں روزہ کھولنے کے بعد، وہ کیفیت نوٹ کریں، جاگنے کے بعد نیند اور مرض کے بعد صحت ہے۔ بات سمجھ گیا نا، کبھی آپ ہمیشہ بھوکے نہیں رہے اور ہمیشہ پیاسے نہیں رہے اور ہمیشہ نہیں جاگے اور ہمیشہ مریض نہیں رہے، ہر تکلیف کے بعد آسودگی ہے، سہولت ہے۔ اسی طرح گم کردہ، منزل پانا، یعنی جو آج منزل گم کر چکے ہیں نا، جس بندے کی زندگی سے منزل دور ہو چکی، اس کا حال کیا ہے سوچیے ذرا۔ गुम करदा मंजिल पाएगा, मशक्कत उठाने वाला आसानी हासिल कर लेगा, अंधेरे छट जाएंगे। और अल्लाह तो खुद कहते हैं कि करीब है कि अल्लाह अपनी फतह या किसी और बात को ले आए। रात को बिशारत दो सुबह सादक की, जो इसको पहाड़ों की तरफ धकेल देगी। यानी रात के बाद सुबह आती है ना, तो रात पता नहीं किसी पहाड़ के पीछे छुप जाती होगी, वादियों की जाने भगा देगी। गमजदा को बिशारत दो रोशनी की तरह, तेजी से आने वाली आसानी की। मुसीबत जदा को खुशखबरी सुना दो, मख्फी लुत्फो करम और मेहरबान हाथों का। जब आप देखें कि सहरा दराज से दराजतर होता जा रहा है, तो जान लें कि इसके बाद सरसब्जो शादाब नखलस्तान है। यानी जब आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वक्त आ जाए, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं, तो ये सारी बातें याद कीजिए जो आपको बताई जा रही हैं। रस्सी लंबी पे लंबी होती जाती है, तो याद रखिए कि जल्द ही वो टूट जाएगी। आंसू के साथ मुस्कुराहट है, खौफ के बाद अमन, घबराहट के बाद सुकून। और आग ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को नहीं जलाया, क्योंकि हुक्म रब्बानी से वो इब्राहिम के लिए ठंडक और सलामती बन गई। समंदर ने मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम को नहीं डबोया, क्योंकि उन्होंने बुलंद और सच्ची आवाज़ में कहा कि नहीं, मेरा रब मेरे साथ है और मुझे रास्ता दिखलाएगा। इन्नमा या रब्बी सयाहदीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यारे ग़ार को ढारस बंधाई थी, यानी अबू बकर सिद्दीक को, कि ला तहसन इन्नल्लाह माना, हमारे साथ अल्लाह है, गम ना कीजिए। लिहाजा अमन व सकीनत और नुसरत हासिल हुई। मौजूदा बुरे हालात के शिकार, मायूस कुन सूरत हाल के गिरफ्तार, सिर्फ तंगी इबरत और बदबख्ती ही का एहसास करते हैं। इनकी नज़र कमरे की दीवार और दरवाजे तक होती है, बंद लगता है ना, घुटन का एहसास होता है। इसके आगे इनकी रसाई नहीं, काश वो पर्दे के पीछे भी देखते, इनकी फिक्र और राय पसे दीवार तक पहुंच पाती। यानी दीवार के पीछे क्या उनको नहीं पता। इसलिए तंग दिल ना हो, हमेशा यकसा हालात नहीं रहेंगे, हालत भी यकसा नहीं रहेगी। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा आएगा। बेहतरीन इबादत अल्लाह की रहमत और आसानी का इंतज़ार है। ज़माना उलटता पलटता रहता है और गर्दिशें दौरान जारी रहती है। गैब मस्तूर है यानी छुपा हुआ है, और मुदब्बिर यानी ठेकेदार। आलम की हर रोज़ नई शान है, क्योंकि कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। उम्मीद है कि अल्लाह इसके बाद कोई मामला पैदा करेगा, तो उसर के साथ युसर है, तंगी के बाद आसानी है। कभी मायूस ना हो, सब कुछ आप देखेंगे गुजर जाएगा। एक बादशाह था, तो उसको बहुत ही ओवर एक्साइटमेंट हो जाती थी खुशी और गम पे। जैसे आज भी कुछ लोग होते हैं ना, घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बात पे खोलने लगते हैं, हाय ये वो ये वो। तो वो उस खुशी में बाद सब ऐसी हरकतें करता था जो बादशाह के स्टेटस पे नहीं थी करने वाली। बाद में शर्मिंदगी होती यानी छिछोर पाना, और इसी के ऑपोजिट गम के वक्त में वो रोना धोना के बाद में लोग कहते हैं, हाय है बादशाह ऐसे रो रहा है। तो बड़े लोगों को इन चीज़ों को भी कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप वाकई किसी जगह लोगों की नज़रों में आते हैं, तो फिर अपनी हरकतों को भी कंट्रोल कीजिए, ताकि आप हाल हुलिये से तो नेक लगे, लेकिन आपकी हरकतें बहुत छिछोरी हों। खैर, कहने लगा इसका कोई इलाज ढूंढे। बहुत सारों ने कोशिश की, लेकिन बादशाह का मसला हल नहीं हुआ। आखिर क्या हुआ आपको पता? बादशाह के एक वज़ीर, तो उसने कहा कि मैं आपकी मदद करता हूँ, ये अंगूठी है, इसको पहन लीजिए, और जब भी बहुत खुश हों तो एक नज़र इसको देख लीजिएगा, और जब दुखी हों तो भी देख लें। लोगों ने देखा कि अजीब जादुई अंगूठी लगती है, हालांकि वो थी कोई ऐसी चीज़ नहीं। बादशाह एकदम चुप हो जाता था, बहुत खुशी में भी नॉर्मल रहता और गम में भी। अब पता है आपको उस अंगूठी पे क्या लिखा था? ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये है फाइन मल उसरी युसरा। तो ज़रा सा इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, उसर के साथ युसर। सयजलुल्लाहु बाद उसरी युसरा, सूरह तल्लाक़ की आयत 7 है। तल्लाक़ के ज़िमन में ही आती है बात कि अन करीब अल्लाह ताला तंगी के बाद कशाइश बख्शेगा। यानी अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा आपके साथ हो गया, या आपके प्यारों में से किसी के साथ, बच्चियों में से, बहन भाइयों में से, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह होती है हमारे सोशल मैटर्स मामलात। अब लोग कहते हैं तलाक हो गई, अब तो हंस ही नहीं सकते, हाय मंगनी छूट गई, अब तो आगे शादी नहीं होगी। अच्छा, फुलां के घर से रिश्ता टूटा है तो बस उनसे तो सलाम दुआ ही नहीं, कलाम नहीं। किसी शादी में भी गए, लोग खुश हो रहे हैं, आप कुड़ कुड़ के जल जल के आ रहे हैं। क्या मेरी आपकी जिंदगी में ये चीज़ तो नहीं है? फिर आप डिप्रेस तो होंगे, टेंशन तो आएगी, फिर आप बीमार भी होंगे, फिर आप दुखी भी रहेंगे। तो आज से ज़िंदगी में ये असूल बनाइए, कोई मेरे साथ बुरा कर नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुशक्क़त उठाने वाले को आसानियों का पैगाम दे दो, क्योंकि उसर के साथ युसर है। भूख के बाद पेट भरता भी है, प्यास के बाद सैराबी भी है, जागने के बाद नींद है, और नींद के बाद जागना है, बीमारी के बाद सेहत है, गुमराही के बाद मंजिल है। क्या ज़िंदगी आपकी मेरी ऐसे नहीं? अच्छा, दो तरह के लोग हैं, किसी को आप आधा गिलास पानी का दिखाएं, पूछे क्या है, कहते आधा गिलास खाली है। सेम वही गिलास दूसरे को दिखाएं, वो कहते हैं आधा गिलास भरा हुआ है। फ़र्क क्या है? एक ने उसर को देखा, एक ने यूसर को देखा, एक शुक्रगुजार है, एक ना शुक्रा है। तो अपनी ज़िंदगी का ये असूल बनाइए कि मैंने हमेशा पॉजिटिव एच को लेना है, नेगेटिविटी को ज़िंदगी से निकाल दीजिए, वरना अक्सर आपका हाजमा ख़राब होगा, आप शुगर के ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाएंगे। बस एक सांस है, सारी उम्र खप खप के आखिर में ब्लड प्रेशर की मरीज़ हो जाती है, थक चुकी होती है ना, बर्दाश्त ही नहीं होता। फिर इसी तरह से आप देखिए कि इम्यूनिटी लूज़ हो जाती है उन लोगों की जो बहुत दुखी रहते हैं जी। तो उसर को भी कबूल कीजिए यूसर की तरह, और मशक्क़त की ज़िल्लत जिन्होंने उठाई, जहाँ में मिली इनको आखर बढ़ाई, किसी ने बग़ैर इसके हरगिज़ ना पाई, फजीलत ना इज्जत ना फरमा रवाई, नेहा इस गुलिस्तां में जितने बड़े हैं, हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। अगर आपने पहले नहीं सुना था तो बता दूं, इल्ताफ़ हुसैन हाली की ये पोएम है, इंतहाई खूबसूरत। अगर मैं कुरान सीखने वाले यानी स्टूडेंट्स को कुछ कहूँ तो यही कहूँ, आप तो वो इज्जतें देखते हैं ना जो उस्तादों को मिलती हैं, आपने वो मुशक्क़तें नहीं देखी जो उन्होंने तालिब इल्मी में सही और आज तक सह रहे हैं। आप बड़ाई चाहते हैं तो बड़ाई से पहले छोटे तो हों, आप इज्जत चाहते हैं तो उससे पहले ज़रा सा अपने आप को जलील तो करें, यानी खपा दें उस चीज़ को लेने के लिए। और ग्रोथ हमेशा नीचे से ऊपर होती है, दरख्त पहले नीचे जाता है, जड़ें बनती हैं, फिर ऊपर आता है। अल्लाह करे हमें ये नुस्खा समझ आ जाए। फिर आप देखिए इसकी कुछ अमली तस्वीरें देखते हैं, कैसे तंगी आसानी को जन्म देती है। अब मौजू तो बड़ा प्यारा है, तो अमली ज़िंदगी में क्या है? सबसे पहले तो बच्चे की पैदाइश, तकलीफ़ माँ उठाती है, बच्चे की खुशी पाती है। जैसे मरियम को कहा कि इस बच्चे को पकड़ और अपनी आंखें ठंडी कर और कुछ खा पी ले, तो बच्चे का मिल जाना जच्चगी की तकलीफ़ों को दूर करता है। यह है फाइन्ना माल उसरी युसरा। फिर दूसरी बात है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान ने तकलीफ़ों के बाद आसानियाँ पाईं, जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। अगर मक्का की 13 साल की मशक्क़तें ना सही होती तो मदीना की जो 10 साल फरमा रवाई और हाकमियत आपको मिली वो ना मिलती। फिर इसी तरह आप देखिए सहाबियात, इन्होंने दुनिया की तकलीफ़ों के बाद जन्नत की राहतें मिलने वाली खुशखबरियाँ पा ली। और सबसे बड़ी बात, इसमें अज़वाज मुतहरात नहीं है, कैसे तंगी तुरशी में गुजर गई, दो दो महीने तक चूल्हा ना जलता था, लेकिन ये उम्मीद थी कि जन्नत में नबी की माइयत मिलेगी, और क्या चाहिए, अक्लमंद थे ये लोग। तुम कुछ ना करके बग़ैर किसी तकलीफ़ के, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कुर्बानियों के और बग़ैर कोई मुश्किल के कामयाबियां चाहते हैं, बग़ैर जान और माल लगाए, जन्नतें चाहें, कामयाबियां चाहें, सुकून पाना चाहें, तो ये नहीं होगा। याद रखने की बातों में से एक बात याद रखिएगा, तवील सहरा के बाद नखलिस्तान आते हैं, जहाँ फिर सब्ज़ा भी होता है और पौधे और पानी भी होता है। और ये भी जान लीजिए कि दराज रस्सी अनकरीब टूटने वाली है, यानी कब तक मोहलत होगी, एक दिन ज़िंदगी की ये डोरी टूटेगी। रस्सी को खींचते जाए ना तो चिर चिर के पतली हो जाती है और आखिर में बीच में से टूटती है। इस टिप के साथ हदीस भी लीजिए, हज़रत अनस की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदद तो सब्र के साथ होती है, कुशादगी रंजो गम के साथ होती है, और बेशक तंगी के साथ आसानी होती है। ये सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2181। अब आप मैं इसके ऊपर जितना गौर कर लें थोड़ा, ये बहुत सारे लोगों के दुखी रहने, गमज़दा रहने की एक बहुत बड़ी वजह होती है। अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ बांटें, लोगों को बुलाइए, यकीन करिए अभी भी आपके इर्द गिर्द हजारों ना भी कहो ना तो सैकड़ों लोग हैं जिनको डिप्रेशन ए टू जी सुनने और समझने की जरूरत है, जो गमों की चक्की में पिस के दुनिया से जाने के इंतजार में है, और उनका हाल उस मुसाफिर का है जो पोटली बांध के बैठा है कि मौत की ट्रेन आए तो मैं जाऊं। ऐसे लोगों को देख के मुझे लगता है डेथ ट्रेन के मुंतजर। लोगों की जिंदगी में खुशियां लाइए, खुशियां बांटिए, फिर देखें जरा क्या मिलता है आपको और उनको। दूसरों को देने वाले ही पाते हैं। तो आज की आखिरी टिप के साथ हम आगे इंशाल्लाह बात पूरी करेंगे। टिप नंबर 13 है, लीमू से मीठा शरबत बनाइए। ये कैसे होता है, लीमू तो खट्टे होते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ लोग खट्टे भी हैं, और मुझे याद आ रही है कुरान पाक की वो खूबसूरत सूरत जिसमें ससुराल का जिक्र है और खट्टे मीठे का जिक्र है। सोचिएगा, ज़िंदगी में कुछ लोग खट्टे होंगे आपके इर्द गिर्द, कड़वे तुर्श, कड़वी जुबानें, लेकिन आपने उनसे मीठा शरबत कैसे बनाना है, इसके लिए आपको ज़हीन होना पड़ेगा, होशियार होना पड़ेगा। इसलिए कि ज़हीन और होशियार नुकसान को फ़ायदे में बदल लेता है, जबकि जाहिल गबी यानी लो IQ वाला शख्स एक मुसीबत को दो आफतें बना देता है। इसको हाईलाइट कर लें, जुमले को लिख सके तो लिख लें। एक मुसीबत नहीं होती जाहिल और गबी ना समझ बंदे के, उसकी दो होती हैं, एक उसका अपना घबरा जाना और उस वक्त रिएक्शनरी होना, और दूसरा वो मुसीबत जो आई भी थी। आप देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकाले गए तो आपने मदीना में ममलिकत कायम फरमा दी, कि जिसने आज तक तारीख को अपनी उंगलियां दांतों के नीचे दबा कर रखा हुआ। आज भी लोग कहते हैं मदीना बन कैसे गया, नामुमकिन था, जैसे आपके मुल्क का भी बनना नामुमकिन था। तो अल्लाह ने नामुमकिन को जब मुमकिन में बदल दिया, तो क्या आपकी ज़िंदगी के नामुमकिनात मुमकिन में नहीं बदलेंगे। इमाम अहमद बिन हम्बल को याद कीजिए, जेल में डाले गए, कोड़े लगाए गए, लेकिन उसके बाद वह अहले सुन्नत के इमाम बन गए। इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह गिरफ्तार किए गए, जेल से जब छूटे तो इनके साथ ज़बरदस्त इल्म था। वो ये जेल से इल्म लेकर आए, हम आरामदेह घरों में बैठकर इल्म ना लें, हमसे भी ज़्यादा कोई काबिल अफसोस है। ताज़ियत करनी चाहिए लोगों को हमारी आराम तलबियों पे। इसी तरह देखिए, सरखसी को अंधे कुएं में बंद कर दिया, एक शख्सियत है तो दो जिल्दों में फिक की किताब लिख दी गई, यानी इन्होंने कुओं में भी बैठ कर काम कर दिया इल्म का, जेलों में बैठ के कर दिया, और मेरे आपसे आरामदेह घरों में नहीं हो रहा। इसी तरह एक बहुत मारूफ शख्सियत इब्नुल असीर, इनको घर में बिठा दिया गया यानी लॉकडाउन कर दिया गया, तो उन्होंने जामेउल असूल और अल निहाया जैसी खूबसूरत किताबें लिखी जो इल्म हदीस की बेहतरीन और मुफीद तरीन किताबें हैं। इब्नुल जौजी तलबीस इबलीस के राइटर, बड़ी मारूफ किताब है। इनको बगदाद से निकाल दिया गया तो उन्होंने किरात सबा की तजवीद तैयार कर दी, 7 किरातों पे जो कुरान पढ़ा जाता है। इसी तरह मालिक इब्ने अरीब को बुखार चढ़ा जो इनका मरजुल मौत वाक़ साबित हुआ, तो इसने वो ज़बरदस्त कसीदा लिखा जो अब्बासी शोरा के पूरे पूरे दीवानों की बराबरी करता है, बड़ा मारूफ कसीदा। इसी तरह अबू ज़ईब अल हज़ली के बेटे मर गए तो इसने इनका वो शाहकार मरसिया कहा कि एक ज़माना मबहूत होकर सुनता रह गया। लोग हैरान रह गए, तारीख ने दाद दी तो लिखिए। अब ये इतने नाम आपको क्यों बताए गए, आप भी तो अपने आप को देखिए ना। लिहाजा जब कोई आफत आए तो इसका रोशन पहलू देखिए। कोई आपको लीमू की प्याली दे तो इसमें थोड़ी सी शक्कर डालकर शरबत बना लीजिए। कोई आपको मुर्दा सांप दे तो इसकी कीमती खाल लेकर बकिया को फेंक दीजिए। बिच्छू जिसे काट खाता है इस पर सांप का जहर असर नहीं करता, यानी एक दफा बिच्छू काट लेना जिंदगी में तो उस बंदे को कभी सांप के जहर का असर नहीं होगा। तो कैसे भी सख्त हालात हों, अपने आप को इनके मुताबिक ढालिए कि आपको फूल ही फूल हासिल हो। और अल्लाह तो कहते हैं आसान तकरहु शैयन वहुवा खैरुल लकुम, सूरत बकरा की आयत 216 है। बहुत मुमकिन है कि तुम्हें कोई चीज़ नापसंदीदा हो और वो तुम्हारे हक में अच्छी हो। चले करीब की मिसालें ले लीजिए, फ्रांस के एक मशहूर इनकलाब से पहले मुल्क के दो बेहतरीन शायरों को कैद कर दिया गया। इनमें से एक नेक शगुन देखता था और दूसरा मनफी, यानी एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, एक ऑप्टमिस्टिक था दूसरा पेसिमिस्ट था। एक दिन दोनों ने खिड़की में से झांक कर देखा, मुस्बत रुख वाला सितारे देखकर हंस पड़ा, मनफी नुक्ता नजर के हामिल ने पास की सड़क पर गर्दो गुबार उड़ते देखा, इसे रोना आ गया। यानी जो करीब से देख रहा था उसको सड़क पर गर्दो गुबार उड़ता दिखा, रोने लग गया। एक सितारा देख के हंस रहा है, दूर है लेकिन खुश है, और दूसरा करीब के गर्दो गुबार की वजह से दुखी है। तो जिंदगी के दोनों नुक्ते नज़रों में बड़ा फ़र्क है। बात यह कि दुनिया में महज शर ही शर नहीं होता, इसलिए हर मुसीबत में खैर का पहलू भी ढूंढिए। तो ये थी आखिरी टिप आज के सेशन की, कि लीमू से मीठा शरबत बनाइए। कैसे? रिकैप करते हैं। होशियार शख्स का नुकसान को नफ़े में बदलना, ये उसकी ज़हानत है। और बेवकूफ़ शख्स की बेवकूफ़ी क्या है? कि जाहिल शख्स मुसीबत को दुगना कर लेता। वैसे बच्चे को चोट लगी, ये भी तो एक तकलीफ़ थी ना, मुसीबत थी। उस पर माँ घबरा रही, शोर कर रही, रो रही, ये दुगनी मुसीबत है। एक फौत हो गया घर में कोई शख्स, ये मुसीबत है। लोग उस पर बैन करने लगते हैं। वजह क्या है कि दोनों अशखास के नज़रियों में फ़र्क है। ज़िंदगी का ये असूल है, इस आयत को भी अपने हिर्ज जान बनाइएगा, कि वासान तक रहु शैन वह हुआ खैरुल्लकुम, वासान तो हिब्बु शैन वह हुआ शरुल्लकुम। हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज़ तुम्हें पसंद और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। 216 अल-बकरा। अमली मिसालें इसकी हमने देखी। तब्दीली कैसे आती है? जब अल्लाह के नबी को मक्का से निकाला गया तो मदीना की ममलिकत बनी। ना मक्का में आपके ऊपर मुश्किल हालात आते, लीमू जैसे खट्टे, तो बाद में मदीना की बादशाहतें भी ना मिलती, तारीख ही बदल गई। इमाम अहमद बिन हम्बल जेल में कैद हुए तो इमाम अहले सुन्नत बन गए। इमाम इब्ने तैमिया गिरफ्तार हुए तो आलिम बने। इब्ने यसीर नज़रबंद हुए तो इल्म हदीस की किताबें लिखीं। ये लॉकडाउन आपको मुझे क्या बनाएगा? सोचा कभी आपने? मैं तो मुंतज़िर हूँ, बिलीव मी, फितरत के इशारे नज़र आ रहे हैं दुनिया में। आप अपने आप से एक सवाल की थी, आपका होमवर्क क्या आज का? अगर आप एक स्टूडेंट समझते हैं खुद को, नहीं समझते तो ना करें, आपकी मर्ज़ी, नो प्रेशर एट ऑल। ये लॉकडाउन मुझे क्या दे रहा है, इस पे गौर कीजिएगा। ये सारी दुआएं जो इस सेशन में आती हैं, इसको अगले दिन दोहराना होता है। मुश्किल में आसानी की दुआ, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا। एक जगह हसना भी आता है, हंसना भी आता है। अल्लाह कोई काम आसान नहीं मगर वही जिसे तू आसान कर दे, और तू मुश्किल काम जब चाहे आसान कर देता है। तो अल्लाह से कहा करे, अल्लाह मुश्किलें हैं अगर ज़िंदगी में तो आसान करे। अल्लाह के हुक्म से मुझे तो कोई मुश्किल आज तक ज़िंदगी में दिखी नहीं। अल्लाह ने हमेशा ही आसानियाँ पहले दिखाई, मुश्किलें तो पीछे रह गई। क्या करें इन सारी बातों को सुनकर? उम्मीद का दामन हाथ से ना छोड़ें, दुआओं की कसरत करें, यकीन रखें कि बस अब आसानी आने वाली। और याद रखिए, ये बेहतरीन इबादत है। हदीस सिर्फ हाफ़से से बता देती हूँ, खुलासा है, और वो क्या है कि इंतज़ार उल फ़रज ही, अच्छे दिनों का इंतज़ार इबादत की बेहतरीन किस्म है। जैसे आप ढूंढ रहे थे घर, किसी का मिल नहीं रहा, एकदम मोड़ मुड़ा तो कोने वाला ही घर था जिसके इर्द गिर्द आधे घंटे से फिर रहे थे। तो बस सब, आपकी मेरी ज़िंदगी में आसानी इतनी ही करीब होती है, और हम नाराज़ होकर पलट के चले जाते हैं कि अब मैं नहीं जाती। और इसी तरह नबियों की मुश्किल को याद कीजिए, सदका व खैरात करें, और सबसे बड़ी बात जो आपको बेगम करेगी, लोगों को अपनी तकलीफ़ें सुनाना छोड़ दीजिए। वो बेचारे तो खुद इतनी मुश्किलात में हैं, आपकी कहाँ से वो सुनेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनु जज़ा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته